मधुर ध्वनि से जो गाते हैं कृष्ण पादाब द्राव उसी कुंकुमे दैतास्त्र मंडित दैताओं ने अपने अंगों में जो लगाया था, जिसको देख करके पुलिंद कन्याओं के हृदय में भी काम भाव उत्पन्न, और जहां कृष्ण उसको लगाया युवा की खास से उठाया और यहाँ पर बड़ी श्रद्धा के साथ में लगा उनका काम लिपेंतान जहोस्तदा और उसका काम सब ऐसे इस कथाओं को जो सुने श्रद्धा पूर्वक, तो कथाओं का कुमकुम यदि लग जाए आभास भी हो तो साधुओं के हृदय एकदम परम निर्बल हो जाए, कामना भाव सब ठीक हो जाएगा। इसलिए गोपियां यहाँ पर अपनी महिमा अपने ही गान कर रही है किंतु समझ नहीं रही वो गोपी कौन थी जिसका कुमकुम
उनकी तो सब शक्ति लागनी शक्ति है वो प्रक्रिया कैसे हो सकती है। अरे भागवत में लिखा है पति कृष्ण के लिए तो कैसे हो जाएगी पति, इस तरह से कह करके भागवत के श्लोक में और विशेषकर उज्जल मुनि की टीका में ऐसा कर दिया अनाधिकारियों के लिए, किंतु अधिकारियों के लिए उन्मुक्त रूप से उन्होंने स्वीकार किया और ये लिखा कि ये किंतु ऐसे यहाँ नारदी लोग भी ऋषि हैं वो रागानुगा भक्ति स्वयं करते हैं किंतु हम लोगों के लिए देखते हैं जैसे अभी अनाधिकारी है, हो सकता है कि किसी जन्म में या इसी जन्म के अंत में उसको हृदय में कुछ उत्पन्न हो जाएगा, इसलिए उनके लिए वो भाव किंतु एक बात नहीं था कि गोस्वामी सब कांत में समन्वय करके दिखा जब कन्या भक्ति करो कर्तव्य तदा तनक का भक्ति संयोगे ही वो कर्तव्य, अतः जो कोई भी साधन हो श्रवण हो स्मरण हो पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य आत्मनिवेदन कोई भी तुलसी सेवा अर्चन यहाँ पर हो रहा है परिक्रमा कर रहे हैं सब समय भगवान का नाम होना जरूरी है अन्यथा वो फलिए इसलिए नाम संकीर्तन सब बेहद है। यहाँ तक कि जिस कर्म में नाम संकीर्तन नहीं है वो काम की सिद्धि नहीं है, सब कामों का प्राण ये नाम जिनका चित्त स्थिर नहीं रहता सब समय चंचल रहता है उन लोगों के लिए अर्चन करना नहीं तो उनके चित्त को समाहित नहीं कर सकते और एक बदलाव का संबंध जोड़ना ये मंत्र इत्यादि सब अर्चन मार्ग का है, रसोई भी अर्चन मार्ग उसको ठाकुर जी की पूजा और रसोई कर रहा है दोनों को एक समान समझो। इसलिए हमारे जितने गोस्वामी लोग हैं ना कितना सुंदर रसोई बनाते और हमारी परमाराध्या जो देवी है वो क्या करती है रसोई के लिए बुलाई जाती है, यदि ये रसोई नहीं जानती ना तो कृष्ण से मिलन होने का बहुत कम संभव है के माध्यम से। इसलिए जितने हमारे बड़े बड़े आचार के लोग हो गए कृष्णदास गोस्वामी रूप गोस्वामी बहुत सुंदर फिल्म बनाते थे इसलिए सोच रहे थे कि आप भैया को, गुरु जी को, सनातन गोस्वामी के दो नाते होंगे, कितनी नाते होंगे, किंतु दो प्रश्न, गुरु शिष्य, किंतु कौन गुरु कौन शिष्य। सनातन जी शिष्य है और गोस्वामी जी गुरु है ना, रूप गोस्वामी शिष्य है और गुरु कौन है, कौन गुरु आप ये ठीक करेगा तो अपराध ना हो जाए, ये ठीक करना बड़ा कठिन। कभी रूप गोस्वामी तो सब समय उनको रूपा है, किंतु सनातन गोस्वामी भी कभी कभी रहा नहीं जाता तो कह देते हैं उसी की कृपा से हमको महापुरुष की कृपा। तो कोई इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए जब इस लेवल में जाते हैं उस समय में हम लोग जैसा स्थूल गुरुत्व का विचार नहीं होता। हम लोग का विचार क्या है, स्थूल गुरु, और उन लोग का होता बहुत बाल का विचार होता है। वो लोग तो विश्व ब्रह्मांड को अपना गुरु मान लेते, एक तिल को भी गुरु मान लेते। ये तिल जितनी भगवान की सेवा करता है मैं नहीं करता, उस तिल को भी अपना गुरु मान। सनातन गोस्वामी ने कहा है भगवत बुद्धि से एक तिल को भी भगवान मान करके पूजा करने से भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं और उसकी भगवान की पूजा हो जाती। और हम लोग कहते हैं ना कि नहीं ऐसा करना चाहिए, कभी कभी ऐसा कहा गया है उसमें गुण नहीं है वैष्णव का, उसको वैष्णव मान दिया, तिलक लगा दिया, तिलक तो ठीक है किंतु तिलक के गड्ढे को तिलक लगा दिया तो उसको भी प्रणाम करने की जरूरत है कि करना चाहिए कि नहीं, तो नहीं करना चाहिए। किंतु एक ऐसा भी है महाभागवत उसको तिलक नहीं रहने से भी गड्ढे को प्रणाम कर लेंगे, इसलिए उनका अधिकार हमारा अधिकार ठीक नहीं है। हम उनके अधिकार के समान में नहीं बातचीत कर सकते हैं ना समझ सकते उनकी बात को। इसलिए बड़ी भक्ति के संबंध में महापुरुष ने जो बतलाए उसी के अनुसार में हम लोगों को अनुगमन करना चाहिए। इसलिए गृहस्थ लोग अपने लिए जो कुछ संग्रह करते हैं यदि उनको गुरु की कृपा से अब वो चीजें भगवान के लिए संग्रह करने लग जाएंगे तो उनका चित्त वृत्ति बदल जाएगा। इसलिए अर्जुन की व्यवस्था है। इसलिए कहते हैं नौधा भक्ति में अर्चन मार्ग प्रधान भी लोग यहां तकलीफ बड़ी भक्त में जो रहने वाले हैं साधारण लोगों के लिए उनको तो स्वर्ण में रुचि है नहीं, कीर्तन में रुचि है नहीं, भगवान के स्मरण में रुचि नहीं है, तो वो क्या कर उनका पौधर सेवन जो है ना परिक्रमा वो भी अड़चन है, उनका रसोई भी अड़चन है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के लिए आचन मार्ग ही सबसे इसलिए नौधा भक्ति में उन लोगों के लिए अर्चन मार्ग की ही प्रधानता है। गुरु जी की हम सेवा करते हैं, हमारी सेवा में होगी उसमें गुरु जी का अर्चन होता है। कैसे समझे हम राधा कृष्ण कहे अर्चन कर रहे हैं, राधा कृष्ण कर अर्चन नहीं होकर फिर नारायण का अर्चन होता है, ये कैसे दिमाग में आएगा और कमिश कर देता है। राधा कृष्ण कहे यहाँ जो अर्चन करते हैं ना वो राधा कृष्ण का अर्चन होता ही नहीं, वो नारायण का अर्थ है। किंतु कैसे हम लोग
हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, भी महापुरुषों की बात रहे आप लोगों ने भी कहीं से
गोपाल की पूजा है नारायण की।
हाँ गोपाल की पूजा है गोपाल, हमारे ही दुख का दुख, हमारे ही दुख का दुख, हमको एक पुत्र दे दो, हमारा ये लड़का बीमार है इसको ठीक कर दो।
तो ये किसकी पूजा हो?
ये गोपाल है बासठ भाव कुछ भी नहीं। क्योंकि काय है जी गोस्वामी जी गृहस्थ धर्म में अनुशीलन में दिन रात कुछ न कुछ ऐसी कानून में लगना पड़ता है जो स्वरूप। अभी ठाकुर जी का अर्चन कर रहा है और बाहर में ही उसके भाई या पत्नी से किसी की मारामारी हो गई, उसका यदि का ये सिर फट गया क्या करेगा? वो
होगा
इसलिए गृहस्थ धर्म में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उसमें अंतर है। और ऐसी भी बहुत सी बातें हैं जो गृहस्थों के लिए चित्त लगाना बड़ा भारी। तो अगर इसके अतिरिक्त उसको भगवान मानता के विग्रह को अर्चन करने से ये सब असुविधाएं धीरे देश में पास, इसीलिए महापुरुषों ने ऐसे व्यवस्था। और दो प्रकार के होते हैं, एक सद्भाव और एक कर्म विश्वास। शुद्ध को हमारे आचार्य ने जो कुछ ग्रहण किया है ये सब शुद्ध होगा। एकनिष्ठ भावना से भगवत के विधान के लिए ही कृष्ण से संबंध स्थापन करने के लिए यदि अर्चन हो और जिनका संबंध स्थापित हो गया है भाव राज्य से कर रहे हैं उनका तो ठीक ये शुद्धता हुआ, और जिनका ऐसा नहीं है वो क्या करेंगे? घर में ठाकुर जी हैं और मैं जब मैं जा रहा हूँ बात सुनना अर्चन कर देना, तो बेटी तू अर्चन कर देना, तो बेटा तू अर्चन कर, अभी दीक्षा तो मेरे अरे कोई बात नहीं है घंटा तो बजा करती हूँ और ठाकुर जी गुप्त होगा। और जब जिस उत्सव होगा ना जन्माष्टमी के दिन क्या करेगा? तरह तरह के चीजें ऊपर गिरा करके वो इसलिए नहीं करता कि ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए, इसलिए करता कि उस दिन बहुत से लोग यहाँ पर बुलाऊंगा और हजारों लोग आएंगे देखेंगे कि मैं कैसा ठाकुर जी का पूजन करता बस उस समय बहुत जोर शोर से और नहीं नाचेगा तो उस दिन खूब नृत्य करेगा भाव नहीं और ठाकुर जी को खूब सेवा करेगा। विशेष करके इसमें असुद्ध वाले में एक दोष यह है ठाकुर जी को रुखी होती हो या कैसा वो दे रहा है किंतु जिस दिन उसके परिवार में गृहस्थ भाग के उसका जमाई घर में आ गया तो क्या करेगा? बाजार से संवेश छाना का रसगुल्ला बनाकर अच्छी चावल का भोग याची पूरी कचौड़ी ये सब लेकर के भोगेगा और वो जब चला जाएगा ना ये सब अशुभ इन अर्चनों के द्वारा बल्कि कुछ अपराध हो जाने की। इसलिए सुधारण करने की चेष्टा हमें उनको करनी चाहिए। इसमें से स्वफल को सब मन सकाम को छोड़ कर निर्पिंच होकर के जन सद्भावी व्यक्ति पहले यहाँ पर हम अर्चन यदि हम अपने लिए नहीं करते तो गुरु जी की सेवा के लिए करो, गुरु जी को प्रसन्न करने के लिए। गुरु जी ने ऐसा कहा है इसलिए गुरु जी को प्रसन्न करने के लिए जब इतना भाव आ जाता है बिना आएगा तो भगवान उससे प्रसन्न और अर्चन करने की तो बात क्या है? एक आदमी एक घंटा चला रहा है पत्नी का आरती में कांस और बजा रहा है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो ब्रह्म साक्षात कर लिए हो ऐसे भी लोगों से एक घंटा एक कनिष्ठ तरीका बजाता है तो कहा ये आरती देखना जब देखते हैं आरती या घंटे की सेवा होती है वो बड़े ब्रह्म ज्ञान ये योगियों से तपस्या के फल से कुछ नहीं है। ब्रह्मवादी तो यहाँ कथा कहें एक महान ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचारी और निष्ठा युक्त हो, सदाचार संपन्न है और सब समय ब्रह्म बंद करता है, सभी से तेज निकल रहा हो, बहुत विद्वान हो, ऐसा नहीं मुक्ति के सब छाता में योग्य हो गया हो, जैसे कि श्रीमद भागवत का उसको है। कितना जो उसकी अपेक्षा में व्यभिचारी व्यक्ति भी हो, दुराचारी व्यक्ति भी हो और भगवान के सामने देख करके और वो घंटा बजा रहा है उसका फल नहीं होगा। हम लोग इसे समझ में इसी के लिए भक्ति विनोद ठाकुर की देवसभा में गए थे, उनको बुलाया था, उनके समझ में नहीं आ रहा था और फिर से दुराचार हो हरि के नाम, तो इसका मतलब नहीं है कि तुम दुराचार करो और बस तुम सबसे श्रेष्ठ हो, तुम हॉर्न रख नहीं जाएगा, इसको कहते हैं नाम के बस ऐसा नहीं। हाँ भाई बाबा आप क्या नहीं करें, कहें हैं कि जनी गुरु है कोई व्यक्ति अत्यंत अशक्त हो सनातन वृद्धावस्था से रोग के कारण और दूसरे कारण, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए अग्नि पुराण में दिया गया है इस सब सामने धारण कर देता है, जो स्वयं पूजा नहीं कर सकते असमर्थ है भक्ति के साथ में अति इसलिए आज हम बात करेंगे विधि का हवन और जो उनको विधियों का हवन और निषेध का, किंतु इसमें एक बात है, लोग होने के बाद में उस विधि आदमी उस समय छूट जाती है, वो दोष नहीं है, प्रवेश करने का वहाँ का जो साधक है उसके लिए दोष जितने भी मंत्र हैं वो सब भगवान नाम के ऊपर लगाए हैं, इसमें तीन चरण हुआ, जब पहले वाले को ले तो चार चरण हो जाता है, इसलिए पहले वाले को दूसरे के साथ मिला लो तो एक हो गया ना कि दूसरा होती है, एक तरह से इसमें बहुत से रहस्य हैं, गुरु के द्वारा से बता दिए जाते हैं, अपने आप उसको छूट दी जाती है, ये सब भगवान नाम का है, इसी नाम में ये शक्ति है, उस नाम में शक्ति है, वो सब संबंध जगना कर देगा, पुरोहित की जरूरत कैसे है, पुरोहित कैसे संबंध स्थापन करता है और माता पिता कन्या के इत्यादि के द्वारा, यहाँ पर गुरु कुछ भाव अपने आप ये सब आता है, गुरुदेव किताब के कुछ उसमें ही देखा था उसके पास
यह ऋषि से कम नहीं है, इसलिए कहते हैं ये जो ऋषि लोग महर्षि लोग हैं ये लोग नमन और इत्यादि के द्वारा उन मंत्रों में एक शक्ति लगा देते हैं। मामन नाम में तो शक्ति है ही है अपने आप, किंतु उसमें नमन और स्वाहा लगा करके उसमें एक विशेष प्रकार की शक्ति लगा देते हैं। उस शक्ति के द्वारा संबंध कायम होकर के उनके अनर्थ दूर हो जाते हैं, क्योंकि ऋषि के द्वारा लगाया गया अपनी शक्ति उसमें लगा देता है, उसको प्रकाश कर देता है। इसलिए याद रखें भगवान उस मंत्र में शक्ति देते हैं, या भागवत जो महर्षिगण है विशेष शक्ति को उसमें दे देते हैं। उसके साथ में मंत्र ग्रहिता जो है संबंध स्थापित हो जाता है, उसमें शक्ति संचरित होती है, उसकी अनुभूति करता है। फिर उन्होंने ये प्रश्न किया, बिना नमक के ही अव्याहति के ही नाम वो तो सब दे सकते हैं, तो फिर उनको क्यों किया? ऐसा करने से कोटि जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन कबू तो न पाए कृष्ण पदे प्रबोधन, वो नहीं पा सकता, इसलिए विशेष शक्ति संकेत करके विधि दिया गया ऐसा मैं तो हो लीजिए। इसलिए कोटि कोटि जन्मों में नाम तो स्वयं भगवान है, सब कुछ दे देंगे, किंतु कोटि कोटि जन्मों में स्वेच्छाचारी होकर के अपनी इच्छा के अनुसार में अतांतिक भक्ति के साथ में अपने समते के अनुराग के साथ में कर रहे हैं, कभी नहीं होगा। क्या होगा? स्वर्ग मिलेगा, संसारिक सुख मिल जाएंगे, मोक्ष अधिक से अधिक मिल जाएगा, बस यही है, आगे नहीं बढ़। इसलिए इन सबको छोड़ करके ऋषि महर्षि हमारे गुरु परंपरा में जैसा लिया गया है उसी प्रकार से अर्चन मंत्र इत्यादि सब खूब निष्ठा के साथ में। इसके बाद उन्होंने बताया है क्या का सेवा अपराध है, 32 प्रकार के और भी 32 प्रकार के और 8 प्रकार के इत्यादि बहुत प्रकार का सेवा अपराध बताया है, उन सेवा अपराधों से बचना चाहिए। और जिनके सेवा अपराध होगा और इधर अर्चन भी होगा या नाम भी होगा तो कुछ अपराध हो सकते, किंतु एक बात याद रखना चाहिए, यदि हम गिर पड़ेंगे तो भूमि ही अवलंबन है, इसलिए नाम को सब समय याद रखना चाहिए। अपराध भी यदि हो जाता है तो उस वैष्णव से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे क्षमा मांग लीजिए, और यदि अप्रगत हो जाए तो निरंतर हरिनाम, और यदि वो जरा अधिक रुष्ट है तो बार बार चेष्टा भी करेंगे और हरिनाम और शांत करेंगे, बस अपने आप प्रसन्न हो जाए, क्षमा कर लेंगे। कहते हैं एक प्रकार का अर्चन और है जिसको मानसिक अर्चन कहते हैं, प्रतिष्ठानपुर नाम का एक स्थान था, वहां एक ब्राह्मण रहते थे, अत्यंत दरिद्र थे, वो कर्मों में व्यस्त रहते थे। एक दिन कहीं पर भागवत हो रहा था, जो वक्ता थे वो परम भागवत, उन्होंने कोई एक इतिहास सुनाया और कहा यदि हम इस अर्चन इत्यादि में अशक्त हैं तो मन के द्वारा भी भगवान का यदि अर्चन किया जाए तो उसका कल्याण। एक दिन वो सरल बुद्धि ब्राह्मण ब्राह्मणों की सभा में किसी वक्ता को ऐसा कहते हुए सुना जिसमें उन्होंने ध्यान मार्ग के योग से चिंतन करते हुए भगवान के अर्चन की भी बात बतलाई। अब वो सुनकर के मन में ही उन्होंने अर्चन करने को ठान लिया। गोदारी उनके घर से तो बहुत दूर थी, दक्षिण देश की बात है, उन्होंने सोचा कि नदियों में गोदावरी नदी घर में शेष गंगा देवी हैं, लक्ष्मी जी ही ये गुलाबी नदी हैं। जैसे हमारे यहाँ जमुना जी की शाखा जी जमुना जी बनी, ऐसे बस वो सवेरे एकदम स्नान करके विधिवत और अपना तिलक इत्यादि सब कर करके सब प्रकार से अपना अन्न है संध्या करके और बैठ जाते। अब भोर में ही यहाँ पर बैठा हुआ चिंतन कर रहा है मैं गोदावरी स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। बस गोदावरी में स्नान तीन गोते लगाए और लगाने के बाद में सोने के कलश में वहीं से सुंदर पानी निर्मल भर करते।
तीन
बार पंखी क्यों लगाते हैं हम तो तीन बार तो होना चाहिए, त्रिकंठी है त्रिदंड है इस तरह से तीन रेखा होती है, हरे नाम हरे नाम अयो के वेद भी तीन है वेदत्रय इस तरह से वो स्नान। मैंने ये कहा और कैसे स्नान करते थे वही बड़े प्रेम के साथ में स्नेह के साथ में आदर के साथ में उनको प्रणाम करके धूली उठा करके वहाँ की मिट्टी और आचमन करके ये पैर हमारा जा रहा है आपके अंदर में ये अपराध ना हो ऐसा प्रणाम करके नदी में उतर करके बड़ी श्रद्धा से स्नान करते सतार नहीं जैसे कि छत्ते कुत्ते और तैरते हैं पैर बजा इसलिए ऐसा करते हैं कुल्ली कर लेते हैं दांत रगड़ लेते हैं ये सब नहीं श्रद्धा के साथ में स्नान करके सोने के कलश में पहले वहां पर बैठ करके सुंदर एक सोने का मंदिर निर्माण और उसमें नारायण चतुर्भुज को सोने की हीरा जवाहरात से बनी हुई है सब तिलक रचना की गई है सोने के और मणियों के कुंडल झलक रहे हैं और ऐसे उनको बैठा और सोने का रत्न सिंहासन पर उनको बैठाया। दरवाजा खोला और खोल करके ये सब चीजें संग्रह की अपने से सुंदर सुंदर बगीचे बनाए हैं बेली चमेली जूही के फूल सब उसमें लगे हैं अपने हाथों से सिंचन करते हैं और उसी में से फूल और तुलसी चयन करके और ये सब चीजें वहां पर अपने हाथों से विधिवत सब मंत्र उनको याद है बैठे बैठे मनी मन में मंत्र जप रहे हैं और स्नान का आसमन से लेकर के षड़शोपचार जो पूजा होती है वो षड़शोपचार से करने के बाद में उनको कुछ भोग लगाते थे भोग लगाने के बाद में ताबुल अर्पण करके और फिर उनके चरणों में अर्पण सब देकर के पुष्पांजलि देकर के फिर उनको शयन ऐसे करते करते एक दिन इस प्रकार की सब विधियां पूरी करके और अर्चन समाप्त कर लिया है आप उनको भोग देने का है बस भोग में देखा जैसे ये एक खीर बनाया है उसमें तरह तरह की चीजें दी गई हैं सुगंधित और उन्होंने भोग देने का हुआ तो देखा जैसे ये गर्म है कि ठंडा हो गया है जरा देख तो नहीं गर्म नहीं देना चाहिए जैसा खूब गर्म खौता हुआ है और दे दिया ऐसा नहीं बस हाथ लगाया कोई उंगली और उंगली लगते ही झट जली और उनका ध्यान देखा कि सचमुच में यहाँ पर वहां पर नारद जी नारायण और लक्ष्मी और उनके सभासद सब थे। नारायण जी हंसने लगे लक्ष्मी जी और सभासद तो सब बोले जैसे किस लिए हंस रहे हैं क्या बात थी तो कुछ वैसी बात नहीं बतलाइए तो हमारा एक भक्त पृथ्वी लोक में मनी मन में अर्चन कर रहा था और अर्चन करते 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 वो खीर उसने बनाई थी भोग देने के लिए जब ले गया तो देखा कि गर्म है कि ठंडी है देने लायक है कि नहीं तो थोड़ी सी उंगली उसको देखना चाहिए दूसरी तरह से चम्मच इत्यादि के द्वारा अब जल्दीबाजी में ध्यान नहीं रहा थोड़ा सा ऐसा लगाया जो लगाते ही उसको गर्म मालूम हुआ उसका ध्यान हो गया अब उसके हाथ में फफोले आ गए इसलिए हमको हंसी आ गई। छठ भगवान सब लोगों परिकरों को लक्ष्मी को गरुड़ पर लेकर के और झट वहीं पर ऊपर और भक्त देखा कि अब क्या करूँ सचमुच में ये हो गया अब तो हमने ठाकुर जी को भोग नहीं दिया और रहा है भगवान वहां को उपस्थित होकर और व्यक्ति को आपने इस पर बैठा दिया जरूर पर और लेकर के वैकुंठ को ले आए कैसे ले आए उसका शरीर जो था प्रारब्ध
करना
ऐसे दूर हो गया उनका शुद्ध शरीर पार्षदों का शरीर चतुर बाहु इत्यादि शरीर उनको कर्तव्य करते देखने में चीज साधारण सी मालूम होती है इसी के आधार पर ही समझो अष्टकाली लीला में यदि हमारे महानुभाव लोग गोस्वामी लोग जो चिंतन करते हैं ना और चिंतन में भावाविष्ट होकर के वो चिंतन करते हैं तो इसका फल होगा तो उसका फल वो लोग वृंदावन में नहीं पहुंचेंगे यदि एक ये कोई साधक नारायण की चिंता करता हुआ अपने को सेवन मान करके चतुर्भुज होकर के चला जाता है तो क्यों नहीं गोपी या गोप इत्यादि के रूप में वहां पर क्यों नहीं चल सकता है। इस जगत में ही उन्होंने दिखलाया पेशकृत कीड़ा, कांच कीड़ा, एक कीड़े को पकड़ लेता है अर्थोला, उसको पकड़ लेता है, वो पानियों में पेशाब साहब के नालियों में वो सब रेंगते रहते पीले से, इतने बड़े होते हैं पंख उनके, पकड़ करके और अपने मार्ग में लेकर के उसको दे देता है और भन 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 करता है, वो डर के मारे चिंतन करते करते कुछ दिनों में ही वो ऐसा ही बच जाता है। तो कोई भक्त ऐसा करता हुआ ऐसा क्यों नहीं होगा। गीता के अनुसार में मरते समय जैसी हम चिंतन करते हैं, जिसका चिंतन करते हैं वैसा हमारा भी शरीर, हिरण की चिंतन करते करते वो हिरण बन करके गए, तो हम लोग वैसी चिंतन करते हुए क्यों नहीं पहुंचेंगे आवेश के साथ। इसलिए ऐसा अर्चन करने का ऐसा नहीं है, तो भगवान का भजन करने से और ये सबसे कैसा फल होगा। आज यही रहे वंचा का पत्रग्रस्त कृपा लो कीर्तन कर महामंत्री पर
जय राम।